میں نہیں تھا کل, ہمیں تھوڑا اندور جانا پڑا تو اس لیے شام کو کلاس نہیں دے سکا. تو آج میں 15 ادھیائے سے شروع کریں گے. 15 ادھیائے کا سار پہلے پاٹھ کرتے ہیں. شریلا بھکتی, یہ ادھیائے کا نام ہے شری مادھویندر پوری کی بھکتی. مادھویندر پوری کون تھے بتائیں گوڑا اینڈ کرشنا. ویری گڈ. مادھویندر پوری تھے ایشور پوری کے گرو. اور ایشور پوری کون تھے؟ شری چیتنیہ مہاپربھو کے گرو. ویری گڈ. شریلا بھکتی ونود ٹھاکر نے امرت پرواہ بھاشیہ میں اس ادھیائے کا سارانش پرکار دیا ہے, اس پرکار دیا ہے. رتھ جاترا اتسو کے بعد شری ادویت آچاریہ پربھو نے پشپ تتھا تلسی دل سے شری چیتنیہ مہاپربھو کی پوجا کی. تلسی کے دوارا کس کا پوجا ہوتا ہے؟ केवल भगवान का पूजा ही तुलसी के द्वारा होता है, और किसी का पूजा तुलसी के द्वारा नहीं होता है. तो अद्वैत आचार्य जो केवल बहुत धार्मिक व्यक्ति ही नहीं, बहुत पंडित भी, बड़े पंडित भी थे, शास्त्रज्ञ पंडित थे. तो अद्वैत आचार्य जब चैतन्य महाप्रभु को तुलसी द्वारा पूजा कर रहे थे, इसका मतलब क्या होता है? ये उन्होंने ये स्थापना कर रहे हैं, प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है. अगर भगवान को बिना, भगवान बिना और किसी को तुलसी के द्वारा पूजा किया गया, अर्थात मतलब पैर पर तुलसी रखा गया, तो उसका सत्यनाश हो जाएगा. इसलिए और कोई भी व्यक्ति तुलसी के द्वारा पूजा ग्रहण नहीं करते, कर नहीं सकते. रथयात्रा उत्सव के बाद श्री अद्वैत आचार्य प्रभु ने पुष्प तथा तुलसी दल से श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा की थी. बदले में महाप्रभु ने भी थाल में बचे फूलों तथा तुलसी दल से अद्वैत आचार्य की पूजा जो अस्सी सो अस्सी जैसे हो वैसे हो मंत्र पढ़ कर की. अच्छा, महाप्रभु ने भी अद्वैत आचार्यों को तुलसी से पूजा किया, इसका मतलब भी क्या हुआ? अद्वैत आचार्य भी भगवान का ही अवतार है. श्री चैतन्य महाप्रभु कौन थे? कोई बोला श्री कृष्ण और कोई बोला, मैं सुनता हूं कृष्णदास क्या बोलते हैं. श्री कृष्ण भगवान,
कृष्ण और राधा का युगल.
वेरी गुड. श्री कृष्ण और राधा का युगल रूप. और अद्वैत आचार्य कौन थे? महाविष्णु. इसका प्रमाण कैसा है? चैतन्य चरितामृत के शुरू शुरू में वर्णन हुआ है, महाविष्णु जगतकर्ता मायायाज श्रीदत्तज तशांश एवायाम अद्वैतमाचार्य मिश्र. जो महाविष्णु जो सारे संसार, सारे ब्रह्मांड को, सारे जगत को, भौतिक जगत को सृष्टि करते हैं, जगतकर्ता मायाया जो सृजत तद, माया के द्वारा जो इस भौतिक जगत को सृष्टि करते हैं, वो ही है श्री अद्वैत आचार्य. और एक ये है पंचतत्तात्मकम कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्त शक्तिकं. भक्तावतार, भक्त अवतार, भगवान को जो अवतार वो भक्त के रूप में आए हैं, महाविष्णु आए हैं श्री अद्वैताचार्य के रूप में. और बलराम कौन है? नितंत कृष्णा बलराम अद्वैत आचार्य राधा रानी नारद मुनि सरल भाव से सरल रूप विचार से ये हैं पंचतत्व। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति, राधा कृष्ण एक होकर आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। ब्रजेन्द्र नंदन जयी शचीसुत हईल सेई बलराम हईल निताय। ब्रजेन्द्र नंदन श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और बलराम है नित्यानंद प्रभु। इसके बाद अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु को प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। जब महाप्रभु तथा उनके भक्तों ने नंदन सब मनाया तो महाप्रभु ने ग्वाल बाल का वेश धारण किया। इस तरह ये उत्सव अत्यंत उल्लासपूर्ण रहा। उसके बाद महाप्रभु तथा उनके भक्तों ने विजयादशमी उत्सव मनाया, जिस दिन भगवान रामचंद्र ने लंका को जीता था। मतलब विजयादशमी बंगाल में विजयादशमी कहा जाता है और यहां मध्य प्रदेश में क्या होता है, क्या बोलता है, दशहरा या राम विजय उत्सव, रामचंद्र का विजय उत्सव। विजयादशमी उत्सव मनाया जिस दिन भगवान रामचंद्र ने लंका को जीता था। इसमें सारे भक्त भगवान रामचंद्र के सैनिक बन गए और महाप्रभु ने हनुमान के आवेश में विविध आनंददायक कार्यकलाप कर दिखाए। तत्पश्चात महाप्रभु तथा उनके भक्तों ने विविध उत्सव संपन्न किया। इसके बाद महाप्रभु ने सभी भक्तों से बंगाल लौट जाने को कहा। उन्होंने नित्यानंद प्रभु को बंगाल में प्रचार कार्य के लिए भेजा तथा उनके साथ रामदास गदाधर दास तथा अन्य भक्तों को भी भेजा। इसके बाद उन्होंने श्रीवास ठाकुर के हाथों से अपनी माता के लिए थोड़ा सा जगन्नाथ जी का प्रसाद तथा उनका वस्त्र भेजा। जब महाप्रभु ने राघव पंडित वासुदेव दत्त कुलीन ग्राम के वासियों तथा अन्य भक्तों को विदाई दी तो उन्होंने उनके दिव्य गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की। रामानंद बसु तथा सत्यराज ने कुछ प्रश्न पूछे और महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया कि गृहस्थ भक्तों को चाहिए कि वे भगवान नाम का कीर्तन करने वाले वैष्णवों के सेवा में ही अपने को लगाए। उन्होंने खंड के वैष्णवों को भी निर्देश दिया। इसी तरह सार्वभौम भट्टाचार्य तथा विद्यावाचस्पति को उपदेश दिया और भगवान रामचंद्र के चरण कमल में दृढ़ श्रद्धा के लिए मुरारी गुप्त की प्रशंसा की। वासुदेव दत्त की विनित प्रार्थना पर विचार करते हुए उन्होंने यह स्थापना की कि भगवान कृष्ण समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करने में समर्थ हैं। तत्पश्चात जब श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो सार्वभौमों के दामाद आमोग ने उनकी आलोचना करके परिवार में उत्पात खड़ा कर दिया। अगले ही दिन उसे बिसुची का हैजा हो गई। जब महाप्रभु ने दया करके उसे बचाया और उसे भगवान कृष्ण के नाम कीर्तन के प्रति जागृत किया। ये चैतन्य चरितामृत का बीच का पाठ हो रहा है तो इसलिए शायद थोड़ा समझने में असुविधा हो सकता है, क्योंकि ये नाम कौन है उनका परिचय सही रूप से शायद आपको याद नहीं है। तो फिर भी यह असुविधा हो रहा है समझने में, किसको असुविधा हो रहा है?
ज्यादा असुविधा नहीं,
सुनने में अच्छा ही लगता है। भगवान का लीला है, सुनने में तो अच्छा लगेगा ही, बहुत अच्छा। तो ये ऐसी पाठ हर रोज होना चाहिए और आप सबको भी हर रोज आना चाहिए। मैं जब नहीं रहता हूं तब शाम को पाठ नहीं होता है, क्यों पाठ करते रहो। शाम को भगवद गीता का क्लास तो नहीं होता है तो चैतन्य चरितमृत का पाठ हो सकता है, ऐसे बंगला और हिंदी में सिर्फ पाठ होने से। मैं जब रहता हूं मैं तो करता हूं, बल्कि मैं जब नहीं रहता हूं तब कौन कर सकता है। गंगा नारायण कोई आएगा नहीं
तो
हाँ आया नहीं, आया भी नहीं तो भी करते कि लोग क्या केवल मेरे लिए आता है, ये तुम्हारा विचार है। आप लोग कैसे, जब मैं आता हूं तभी आते हैं, नहीं 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 तो नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। आप आते हैं, आप भी नहीं आते हैं, तो आपको कैसे मालूम कि नहीं आते हैं। क्लास में तो ये हम विचार कर सकते हैं क्यों नहीं आते, आप बताइए क्यों नहीं आते हैं।
कुछ समझ में कम आता है, लैंग्वेज ऐसी है समझ ठीक से नहीं आता है।
कौन किस लिए, हिंदी ठीक से, हिंदी का उच्चारण ठीक से नहीं होता। अगर पर्स जो कोई परशुराम तुम कर पाठ कर सकते हैं, जो नहीं परशुराम कर सकते राघव पंडित भी कर सकता है। तो ऐसे तुम लोग एक एक दिन एक एक भक्त तब आएंगे आप। कभी कभी आपको भी पाठ करना चाहिए। आप तो दो तीन साल हो गए, चार पांच साल आप आ रहे हैं, तो आप तो आपको पाठ करना चाहिए। मैं जब तीन दिन का था तब से ही मैं पाठ करना शुरू किया था।
बुलंद आवाज नहीं ना, बुलंद आवाज है उसके लिए, धीमी आवाज है
आपका माइक है ना। सार्वभौमो गृहे भुंजन सनिंदकम ममोघकम अंगी कुर्वन स्फुटां चक्रे गौरस्वां भक्तवश्यताम। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे तो अमोघ ने उनकी आलोचना की। उस समय महाप्रभु ने भी दिखला दिया कि वे अपने भक्तों के कितने कृतज्ञ हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैताचार्य की जय हो तथा चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। जय श्री चैतन्य चरितामृत श्रोतागण चैतन्य चरितामृत जार प्राणधान। श्री चैतन्य महाप्रभु के श्रोताओं की जय हो जिन्होंने इसे अपना प्राण मान रखा है। ऐ मत महाप्रभु भक्तगण संगे नीलाचले रोही करे नृत्य गीत रंगे। मेरा हिंदी समझने में दिक्कत नहीं होता है। सुनकर थोड़ा आश्वासन। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हुए अपने भक्तों के साथ निरंतर कीर्तन और नर्तन का आनंद लेते रहे। प्रथमावसरे जगन्नाथ दर्शन नृत्य गीत करे दंड परन पर प्रणाम स्नवन। पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर में जगन्नाथ अर्च विग्रह के दर्शन किए, उन्हें नमस्कार किया, उनकी प्रार्थना की और उनके समक्ष नाचा गाया। উপল ভোগ লাগিলে করে বাহিরে বিজয়, হরিদাস মিলি আইসে আপন নিলয়। মন্দির মে জানে কি বাদ মহাপ্রভু উপল ভোগ কে সময় মন্দির কে বাহার রহতে থে, তব ওয়ে হরিদাস সে মিলনে যাতে আর ফির আপনে নিবাস স্থান লৌট আতে থে। দোপহর কি সময় জব ভোগ বর্ধন খণ্ড নামক স্থান মে উপল ভোগ অর্পিত কিয়া জাতা তো মহাপ্রভু মন্দির কে বাহার রহতে থে। ঘরে বসি করে প্রভু নাম সংকীর্তন, অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন। মহাপ্রভু আপনে কমরে মে বৈঠকর মালা পর জপ করতে আর অদ্বৈত প্রভু উহাঁ পর মহাপ্রভু কি পূজা করনে আয়া করতে। সুগন্ধি সলিলে দেন পাদ্য আচমন, সর্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি চন্দন। মহাপ্রভু কি পূজা করতে সময় অদ্বৈত আচার্য উন্হে মুহ তথা পাও ধোনে কে লিয়ে সুগন্ধিত জল দিয়া করতে। ফির অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভু কে পুরে শরীর মে সুগন্ধিত চন্দন কা লেপ কিয়া করতে। গলেমালা দেন মাথায় তুলসী মঞ্জরি, জোর হাতে স্তুতি করে পদে নমস্করি। অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভু কে গলে মে ফুলকি মালা আর সির পে তুলসী কি মঞ্জরি চড়ায়া করতে থে, ফির হাত জোর কর উন্হে নমস্কার করতে আর তব উনকি স্তুতি করতে থে। পূজা পাত্রে পুষ্প তুলসী শেষ যা ছিল সেই সব লইয়া প্রভু আচার্য পুছিল পূজিল। ইস তরহ অদ্বৈত মহাপ্রভু দ্বারা পূজে জানে কে বাদ মহাপ্রভু থাল মে বছে ফুলো তথা তুলসী মঞ্জরি সে অদ্বৈত আচার্য কি পূজা করতে। যোসি সোসি নমস্তুতে এই মন্ত্র পরে মুখবাদ্য করি প্রভু হাসায় আচার্যেরে। মহাপ্রভু তুম জৈসে ভি হো হো লেকিন মে তুমে নমস্কার করতা হুঁ, ইস মন্ত্র কা উচ্চারণ করকে অদ্বৈত আচার্য কি পূজা করতে থে। ইসকে অতিরিক্ত ভি মহাপ্রভু আপনে মুহ কে ভিতর কুছ শব্দোচ্চার করতে থে জিসে অদ্বৈত আচার্য কো হাসি আ জাতি। এই মত অন্যান্য করেন নমস্কার, প্রভুরে নিমন্ত্রণ করে আচার্য বারবার। ইস তরহ অদ্বৈত আচার্য তথা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এক দূসরে কো নমস্কার করতে থে, তব অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভু কো বার বার আপনে ইহা আনে কা নিমন্ত্রণ দেতে। আচার্যের নিমন্ত্রণ আশ্চর্য কথন বিস্তারি বর্ণী আছেন দাস বৃন্দাবন। শ্রী অদ্বৈত আচার্য কা নিমন্ত্রণ দূসরি অদ্ভুত কথা হ্যায়, ইসকা বিস্তৃত বর্ণন বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নে কিয়া হ্যায়। চৈতন্য মহাপ্রভু কা লীলামৃত সবসে পহলে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নে চৈতন্য ভাগবত মে বর্ণন কিয়ে হ্যায়। তো চৈতন্য চরিতামৃত ইসকে পশ্চাৎ রচনা হুয়া থা কৃষ্ণদাস কবিরাজ কে দ্বারা, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কে দ্বারা। ইসলিয়ে ইহা কহ রহে হ্যায় কি অদ্বৈত আচার্য জৈসে চৈতন্য মহাপ্রভু কো আমন্ত্রিত কিয়ে থে ঘর মে, উনকা ঘর মে প্রসাদ লেনে কে লিয়ে, আর জৈসে চৈতন্য মহাপ্রভু প্রসাদ লিয়ে থে, ইয়ে এক অদ্ভুত কাহানি হ্যায়। তো উসকা বিস্তৃত বর্ণন বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নে শ্রী চৈতন্য ভাগবত মে কিয়ে হ্যায়। পুনরুক্তি হয় তাহা না কইলু বর্ণন, আর ভক্তগণ করে প্রভুরে নিমন্ত্রণ। চিউকি অদ্বৈত আচার্য কে নিমন্ত্রণ কা বর্ণন বৃন্দাবনদাস ঠাকুর কর চুকে হ্যায়, অতএব মে ইস কথা কা কথা কো নহি দুহরাউগা। ফির ভি মে কহুঙ্গা কি অন্য ভক্ত ভী মহাপ্রভু কো নিমন্ত্রণ দে। এক এক দিন এক এক ভক্ত গৃহ মহোৎসব, প্রভু সঙ্গে তাহা ভোজন করে ভক্ত সব। বাড়ি বাড়ি মে এক এক ভক্ত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তথা অন্য ভক্ত কো ভোজন কে লিয়ে নিমন্ত্রণ দেতা আর আপনে ইহা উৎসব মনাতা। চারি মাস রহিল সবে মহাপ্রভু সঙ্গে, जगन्नाथेर नाना यात्रा देखे महारंगे। सारे भक्त लगातार चार मास तक जगन्नाथ पुरी में रहे और उन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ भगवान जगन्नाथ के सारे उत्सव मनाए। कृष्ण जन्म यात्रा दिने नंद महोत्सव गोपवेश हईला प्रभु लोइया भक्त सब। भक्तों ने कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव भी मनाया जिसे नंद महोत्सव भी कहा जाता है। इस अवसर पर श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों ने ग्वालों का वेश धारण किया। दोधी दुग्ध भार सवे निज स्कंधे करी महोत्सव स्थाने आईला बोली हरि हरि। ग्वालों का वेश धारण कर तथा कंधे में बहंगी पर दूध तथा दही के बर्तन लेकर सारे भक्त हरि हरि उच्चारण करके महोत्सव स्थल पर आए। कानाई खुंटिया आछेन नंद वेश धरी जगन्नाथ महाती होइयाछेन ब्रजेश्वरी। कनाई खुंटिया ने नंद महाराज का वेश बनाया, मतलब कनाई खुंटिया नंद महाराज बना। एक नाटक हो रहा था वहां, सब महाप्रभु और सब भक्तोगण ग्वालवाल और ब्रजवासी बन के कृष्ण नंदोत्सव मना रहे थे, कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे थे। तो कनाई खुंटिया जो महाराज प्रताप रुद्र का एक बड़े राज कर्मचारी थे, वो नंद महाराज बने और जगन्नाथ महाती ने यशोदा मां बनी। उस समय तो औरत लोग नाटक नहीं करते थे, दूसरे के समक्ष औरत लोग लड़की लोग नहीं आती थी। वहां उस समय कुछ दिन पहले भी मैं भी देखा पुरुष लोग औरत बन के नाटक करते थे, वह सब पुरुष लोग होते थे, वही में औरत लोग नहीं स्टेज पर मंच पर नाटक करती थी। तो हाँ, इसलिए जगन्नाथ महाती मां यशोदा बनी। आपोने प्रताप रुद्र आर मिश्र काशी सार्वभौम आर परिछा पात्र तुलसी। उस समय काशी मिश्र सार्वभौम भट्टाचार्य तथा तुलसी परीक्षा पात्र समेत राजा प्रताप रुद्र भी वहां उपस्थित थे। यहां सभा लोइया प्रभु करे नृत्य रंग दधी दुग्ध हरिद्रा जले भरे सवार अंग। सदैव की तरह महाप्रभु उल्लासपूर्वक नाचे, सारे लोग दूध दही तथा हल्दी के पीले जल के सराबोर हो गए, पीले जल से सराबोर हो गए। अद्वैत कहे सत्य कही ना करी हो को लागुर फिराइते पारो तबे जानी गोप। तभी श्रील अद्वैत आचार्य ने कहा आप नाराज न हो, मैं सच कह रहा हूं, यदि आप इस लट्ठी को चंद्राकार घुमा सके तो मैं समझूंगा कि आप ग्वाल हैं, आप ग्वाले हैं। किसको बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि ग्वालवाल वो लट्ठी फिराते हैं जिसे ब्रजबोली में बोलते हैं लगुड़ फिराना। तो ये अद्वैताचार्य जो बोला, असल में चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण। कृष्ण कौन है? ग्वाल बाल है। तो अद्वैताचार्य कह रहे हैं कि तुम अगर ये लट्ठी फिरा सकते हो, मतलब इससे खेल सकते हो, तो बहुत सुंदर रूप से हो ये करते हैं ग्वाल बाल वृंदावन के, तो अगर तुम ये कर सकोगे तो मैं समझूंगा कि तुम ग्वाल हो, ग्वाल बाल हो मतलब कृष्ण हो। तबे लागुर लोइया प्रभु फिराइते लागिला बार बार आकाशे फेली लुफिया धरिला। अद्वैत आचार्य की बाजी स्वीकार करके महाप्रभु ने बड़ी सी लाठी ली और उसे चारों ओर घुमाने लगे। वे बार बार लाठी को उछालते और पकड़ते रहे। শিরের উপরে পৃষ্ঠ সম্মুখে দুই পাশে পাদোদ্বয়ে ফিরায় লগুর দেখিল হাসে। মহাপ্রভু আপনি লাঠি কো ঘুমাতে আর কভি আপনি সির পর লে যাতে, মতলব সির পর ঘুমাতে হ্যাঁ দোনো সাইড মে, কভি পিঠ পর ঘুমাতে, কভি সামনে, কভি বগল মে, আর কভি কভি দোনো পাও কে বীচ। আর ইয়ে দেখকর সারে লোক হাসনে লগে। আলা চক্রের প্রায় লগুর ফিরায় দেখিল সর্বলোক চিত্তে চমৎকার পায়। আলা চক্র কা মতলব হ্যায় জব মহাপ্রভু লাঠি কো অগ্নিবান আলা চক্র কি তরহ ঘুমাতে তো দেখনে ওয়ালে কো হৃদয় চমৎকৃত হো যায়। আলা চক্র কা অগ্নিবান শব্দ আয়া হ্যায় ইয়াহাঁ, ইয়ে পতা হ্যায় ইয়ে অগ্নিবান ইয়ে আলা চক্র কা মতলব ক্যা হোতা হ্যায়। জব এক ধূপ কাজ জো ইয়ে হতা হ্যায় ধূপ এসে জগর হাম ঘুমায়ে তো কেসা লাগতা হ্যায়, লাগতা হ্যায় সারে ইয়ে আগ হ্যায়, আগ কা এসে গোলাকার হো গিয়া, বলকি যদ্যপি ইয়ে কেবল এক এক ইয়ে হ্যায় ছোটা সা অগ্নি হ্যায়, বলকি উসকো ঘুমানে সে লাগতা হ্যায় কি চারো তরফ হি ইয়ে আগ হ্যায়, উসে আলা চক্র কহতা হ্যায়। তো মহাপ্রভু জৈসে লকড়ি লাঠি ফিরা লগুর ফিরা রে থে, লগুর কা হিন্দি ক্যা হ্যায়, ছোট
ছোট
ইয়ে জো জো লকড়ি জো হতা হ্যায়
বাঁশ,
লাঠি লাঠি বলতে লাঠি, আচ্ছা হ্যাঁ ইয়া লাঠি লাঠি বতায়া গিয়া। ইয়ে লাঠি কো এসে ফিরানে লগে, ইতনা মতলব ইতনা তেজ ইতনা জলদি ঘুমাতে রে কি লগ রা থা কি ইয়ে সারে হি লাঠি লাঠি হ্যায় চারো ওর। তো ইয়ে দেখকর লোক বহুত চমৎকৃত হো গে। এই মতো নিত্যানন্দ ফিরায় লাগুর, এই মতো নিত্যানন্দ ফিরায় লাগুর, কে বুঝবে তাহা দুহার গোপ ভাব গুড়। আর নিত্যানন্দ প্রভু ভি নিত্যানন্দ প্রভু নে ভি লাঠি ঘুমাই, কোন জান সকতা হ্যায় কি ওয়ে গোয়ালো কে ভাব মে কিতনে গহরে ডুব গয়ে থে। প্রতাপ রুদ্রের আজ্ঞায় পরিছা তুলসী জগন্নাথের প্রসাদ বস্ত্র এক লইয়া আসি। মহারাজ প্রতাপ রুদ্র কি আজ্ঞা পাকর মন্দির কা নিরীক্ষক তুলসী ভগবান জগন্নাথ কে উতরে উতারে বস্ত্র লে আয়ে। বহুমূল্য বস্ত্র প্রভু মস্তকে বাঁধিল, আচার্যাদি প্রভুগণে প্রভুর গণেরে পড়াইল। ইয়ে বহুমূল্য বস্ত্র মহাপ্রভুকে শির পর লপেট দিয়া গয়া, অদ্বৈত আচার্য আদি ভক্তনে ভি আপনে শিরো পর ইসি তরহ বস্ত্র লপেট লিয়ে। কানাই খুন্টিয়া জগন্নাথ দুইজন আবেশে বিলাইল ঘরে ছিল যত ধন। কানাই খুন্টিয়ানে ভাবাবেশ মে নন্দ মহারাজ কা ওর জগন্নাথ মাহাতি কে মাতা যশোদা কে যশোদা কা বেশ ধরা ওর উনহোনে ঘর মে সঞ্চিত সারে ধন কো বাঁট দিয়া। উস নন্দোৎসব কে দিন, নন্দোৎসব কব হতা হ্যায়, কৃষ্ণ কা জন্ম অষ্টমী কে দিন হুয়া থা, তো অষ্টমী কে পশ্চাৎ যে নবমী কে দিন নন্দ মহারাজ কে ঘর মে বহুত বড়ে মহোৎসব হুয়া, তো উসে নন্দোৎসব কহা যাতা হ্যায়। তো ইহা কহা গয়া বর্ণন হুয়া হ্যায় কি কানাই খুন্টিয়া নন্দ মহারাজ বনা আর জগন্নাথ মাহাতি মা যশোদা বনি। তো জগন্নাথ মা নন্দ মহারাজ আর মা যশোদা নে বহুত দান দিয়া উস দিন সবকো, জিতনা কুছ সম্পদা থা উনকা ঘর মে জো কুছ থা সব বাঁট দিয়া হ্যায় সব ব্রাহ্মণ আর বৈষ্ণব কো। তো উনকি ভাব মে ভাব উস ভাব কা আবেশ মে উনহোনে ভি कन्हैया खुंटिया और जगन्नाथ महती भी ऐसे सारे कुछ अपना घर से बांट दिया सबको। देखी महाप्रभु बड़ संतोष पाइला, माता पिता ज्ञाने दुहे नमस्कार कोइला। चैतन्य महाप्रभु ये देखकर परम संतुष्ट हुए। उन्होंने उन दोनों को अपना पिता तथा माता मानकर नमस्कार किया। परम आवेश प्रभु आइला निज घर, यही मत लीला करे गौरांग सुंदर। श्री चैतन्य महाप्रभु परम आवेश में अपने स्थान लौट आए। इस तरह गौरांग सुंदर ने विविध लीलाएं की। विजया दशमी लंका विजय दिने, बानर सैन्य कोइल प्रभु लोइया भक्तगणे। लंका पर श्री रामचंद्र की विजय मनाने के दिन, विजयादशमी के दिन, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को बानर सैनिकों का वेश धारण कराया। हनुमान आवेश प्रभु वृक्ष शाखा लोइया, लंका गड़े चोरी फैले गौड़ भांगिया। हनुमान के आवेश में महाप्रभु ने एक विशाल वृक्ष की शाखा ले ली और लंका गढ़ की दीवालों पर चढ़कर उसे तहस नहस करने लगे। कहारे रावणा प्रभु कहे क्रोधावेशे, जगन माता हरे पापी मारी मूषक वंशे। हनुमान के आवेश में महाप्रभु ने क्रुद्ध होकर कहा है धूर्त रावण, उसने जगन माता सीता का अपहरण किया है, अब मैं उसे तथा उसके सारे परिवार को मार डालूंगा। गोसाई आवेश देखी लोके चमत्कार, सर्वलोक जय जय बोले बार बार। सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का आवेश देखकर अचंभित हो गए और बारंबार जय हो की ध्वनि करने लगे। यही मतो राशोजात्रा आर दीपावली, उत्थान द्वादशी यात्रा देखिल सकली। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके सारे भक्तों ने रास यात्रा, दीपावली तथा उत्थान द्वादशी इन सभी उत्सवों में भाग लिया। एक दिन महाप्रभु नित्यानंदे लइया, दुई भाई जुक्ति कईल निभृते बसिया। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु दोनों भाइयों ने एकांत स्थान में बैठकर परस्पर विचार विमर्श किया। किवा जुक्ति कोइला दुहे केहो नहीं जाने, फले अनुमान पाछे कोइलो भक्त गाने। ये कोई नहीं जान पाया कि दोनों भाइयों ने परस्पर क्या बातें की, किंतु बाद में भक्तों के अनुमान लगा कि उनका क्या विषय हो सकता है। तबे महाप्रभु सब भक्ते बुलाइलो, गौर देशे जाहो सबे विदाय करिलो। इसके बाद महाप्रभु ने सारे भक्तों को बुलाकर उनसे बंगाल वापस जाने के लिए कहा। इस तरह उन्होंने उन सबों को विदा किया। सबारे कहिलो को प्रभु प्रत्युब्ध आशिया, गुंडीचा देखिया जावे आमारे मिलिया। सारे भक्तों को विदा करते हुए महाप्रभु ने उनसे प्रार्थना की कि वे प्रतिवर्ष उन्हें देखने जगन्नाथपुरी वापस आते रहें और गुंडीचा मंदिर की सफाई देखें। आचार्य रे आज्ञा दिलो कोरिया सम्मान, आचंडाल आदि कृष्ण भक्ति दियो दान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सम्मान पूर्वक अद्वैत आचार्य से प्रार्थना की, आप अधम से अधम व्यक्तियों चंडालों को भी कृष्ण भक्ति प्रदान करें। नित्यानंदे आज्ञा दिल जाहो गौर देशे, अनर्गल प्रेम भक्ति करियो प्रकाशे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आज्ञा दी, तुम बंगाल जाओ और बिना किसी प्रतिबंध के कृष्ण भक्ति का प्राकट्य करो। रामदास गदाधर आदि कत जाने, तुमार सहाय लागी दिलु तुमार शने। नित्यानंद को रामदास गदाधर तथा अन्य कोई सहायक दिए गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं इन्हें तुम्हारी सहायता के लिए दे रहा हूं। मध्य मध्य आमी तुमार निकट जाइबो, अलक्षिते रही तुमार नृत्य देखिबो। मैं बीच बीच में तुम्हें देखने आया करूंगा, मैं अदृश्य रहकर तुम्हारा नाच देखा करूंगा। श्रीबाष पंडिते प्रभु कोरिया लिंगन, कंठे धरी करे तारे मधुर वचन। तत्पश्चात महाप्रभु ने श्रीबाष पंडित का आलिंगन किया और उनके गले में बाहें डालकर उनसे मधुर वचन कहा। तुमार घर कीर्तन आमी नित्य नाचिबो, तुमी देखी पावे आर केहो ना देखिबो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से प्रार्थना की, तुम नित्य संकीर्तन करना और इतना समझ रखना कि तुम्हारी उपस्थिति में मैं भी नाचूंगा, तुम ये नाच देख सकोगे किंतु अन्य लोग नहीं देख सकेंगे। एई वस्त्र माता के दिहो, एई सब प्रसाद, दंडवत करी अमार क्षमाइयो अपराध। इस जगन्नाथ प्रसाद को और इस वस्त्र को लो, इन्हें मेरी माता शची देवी को जाकर दे देना। उन्हें प्रणाम करने के बाद उनसे प्रार्थना करना कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। तार सेवा छाड़ी आमी करियाछि सन्यास, धर्म नहि करी आमी निज धर्म नाश। मैंने अपनी माता की सेवा छोड़कर सन्यास धारण कर लिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करके मैंने अपना धर्म नष्ट कर किया है। तार प्रेम बशामी तार सेवा धर्म, ताहा छाड़ी करियाछि बातुलेरो कर्म। मैं अपने माता के प्रेम के अधीन हूं और मेरा धर्म है कि बदले में मैं उनकी सेवा करूं, लेकिन ऐसा न करके मैंने सन्यास ग्रहण कर लिया, निस्संदेह ये पागलपन है। बातुल बालकेर माता नाही लय दोष, एई जानी माता मोरे ना करे रोष। माता अपने पागल बेटे से रुष्ट नहीं होती, ये जानते हुए मेरी माता मुझ पर रोष ना करे। की कार्य सन्यासे मोर प्रेम निज धन, जे काले सन्यास कइलु छन्न हईल मन। मुझे इस सन्यास के स्वीकार करने तथा अपने धन स्वरूप मातृ प्रेम की बलि देने से कुछ भी प्रयोजन नहीं था। वास्तव में जब मैंने सन्यास स्वीकार किया उस समय मुझे पागलपन सवार था। नीलाचले आछमुई ताहार अज्ञाते, मध्य मध्य आशिमु तार चरण देखिते। मैं यहां जगन्नाथपुरी में उनके आदेशों को पालन करने के लिए रुका हुआ हूं, किंतु बीच बीच में मैं उनके चरण कमलों का दर्शन करने आता रहूंगा। नित्य जाई देखिमुई ताहार चरणे, स्फूर्ति ज्ञाने नह तेह नहा सत्य नहीं माने, स्फूर्ति ज्ञाने तेह ताहा सत्य नहीं माने। मैं रोज ही वहां अपनी माता के चरण कमलों का दर्शन करने जाता हूं, यद्यपि उसे मेरी उपस्थिति का भान होता है और पर उसे सत्य नहीं मानती। एक दिन शाल्लान्न व्यंजन पांच सात, शाक मोचा घंट पृष्ट पटल निम्ब पार, लेम्बू आदा खंड दधि दुग्ध खंड सार, शालोग्रामे समर पिलेन बहु उपहार। एक दिन मेरी माता सची देवी ने शालग्राम को विष्णु को भोजन अर्पित किया, उसने पकाया चावल, तरह तरह की तरकारियां, पालक, फैला के फूलों केला के फूलों की बानी कढ़ी, नीम की पत्तियां के साथ तेल तले पटोल, नींबू समेत अदरक के टुकड़े, दही दूध खंड तथा अन्य पकवान अर्पित किए। प्रसाद लोइया कोले करें क्रंदन, निमायर प्रियमोर ए सब व्यंजन। अपने गोद में भोजन लेकर तथा ये याद करके मेरी माता रो रही थी, किंतु ये भोजन तो मेरे निमाय की अत्यंत प्रिय है। रो रही थी कि ये भोजन तो मेरे निमाई की अत्यंत प्रिय है। निमाई नाही को ये था के करे भोजन, मोर धन मोर ध्याने अश्रुजले भरिल नयन। मेरी माता सोच रही थी यहां पर निमाई नहीं है, इस भोजन को कौन ग्रहण करेगा। जब वो मेरे बारे में इस तरह सोच रही थी तो उसके आंखों में आंसू भर आए। शीघ्र आई मुई सब करिनु भक्षण, शून्य पात्र देखी अश्रु करिया मार्जन। जब वो इस तरह सोचकर रो रही थी तो मैं जल्दी से वहां गया और सब भोजन चट कर गया। थाल को खाली देखकर उसने अपने आंसू पोंछ डाले। कि अन्न व्यंजन खाइलो शून्य कने पात, बाल गोपाल किबा खाइलो सब भात। तब वो आश्चर्य करने लगी कि किसने सारा भोजन खा लिया, ये थाल खाली क्यों है। उसे यह आश्चर्य हुआ कि कहीं बाल गोपाल ने तो नहीं खा लिया। किबा मोर कथाए मने भ्रम होइया गेल, किबा कौन जंतु आशी सकल खाइलो। यह आश्चर्य करने लगी कि थाल में पहले से भोजन था भी या नहीं। वो आश्चर्य करने लगी कि थाल में पहले से भोजन था या नहीं। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कोई पशु आकर सारा भोजन खा गया है। किबा आमी अन्न पात्रे भ्रमे न बारिलो, एतो चिंती पाक पात्र जाइया देखिलो। उसने सोचा कि हो सकता है गलती से मैं थाल में भोजन रखा ही ना हो। इस तरह सोचते हुए वो रसोई घर गई और वहां बर्तनों को देखा। अन्न व्यंजन पूर्ण देखी सकल भाजने, देखिया संशय हुईलो किछु चमत्कार मने। जब उसने देखा कि सारे बर्तन अब भी चावल तथा तरकारी से पूर्ण है तो उसके मन में कुछ संदेह हुआ और वो अचंभित हुई। ईशा ने बोला यह पुनः स्थान ले पाइलो, पुनरोपी गोपाल के अन्न समर्पिलो। इस तरह आश्चर्यचकित होकर उसने अपने नौकर ईशान को बुलाया और उस स्थान की फिर से सफाई कराई। तब उसने गोपाल को दूसरी थाल अर्पित की। एई मतो जबे करेन उत्तम रंधन, मोरे खवाईते करे उत्कंठाय रोदन। अब जब भी वो कई अच्छा भोजन बनाती है और मुझे वो भोजन खिलाना चाहती है तो उत्कंठावश रोने लगती है। तार प्रेमे आनी अमाय कराय भोजने, अंतरे मानोय सुख बाध्य नहीं माने। उनकी प्रेम के वशीभूत होकर मैं वहां भोजन करने के लिए जाता हूं। मेरी माता ये बातें भीतर भीतर जानती हैं और खुशी सुखी होती हैं, किंतु बाहर से वो इन्हें नहीं मानती। एई विजय दशमीते होइल एई रीति, ताहाके पूछिया तार कड़ाई हो पीरीति। ऐसा घटना पिछली विजयादशमी के दिन घटी। तुम उससे इस घटना के बारे में पूछ सकते हो और उसे विश्वास दिलाना कि मैं सचमुच वहां जाता हूं। ऐते कोहिते प्रभु बियुभल होइला, लोक विदाय कोरिते प्रभु धैर्य धरिला। ये सब कहते हुए महाप्रभु का गला भर आया, किंतु भक्तों की विदाई पूरी करने के उद्देश्य से वे शांत रहे आए। राघव पंडित कहेन वचन रसरस, तुमार शुद्ध प्रेमे आमी होई तुमार बस। इसके बाद महाप्रभु राघव पंडित से मीठी वाणी में बोले, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम शुद्ध है जिसके लिए मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं। इहार कृष्ण सेवार कथा सुन सर्वजन, परम पवित्र सेवा अति सर्वोत्तम। जब महाप्रभु ने सबों से कहा सुनो, तुम लोग राघव पंडित द्वारा की गई शुद्ध कृष्ण भक्ति के बारे में सुनो। राघव पंडित की सेवा परम शुद्ध तथा सर्वोत्तम है। आर द्रव्य रोही सुनो नारकेलेर कथा, पांच गंड कोरी नारी केल बिकाय कथा। अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त उसके द्वारा नारियल भेंट किए जाने के बारे में सुनो। एक नारियल पांच गंडे में बिकता है। बाटीते कत शत वृक्षे लक्ष लक्ष फल, तथापि सुनें जथा मिष्ट नारिकेल। यद्यपि उसके पास पहले से सौकड़ वृक्ष तथा लाखों फल हैं, किंतु फिर भी वो इस स्थान के विषय में सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहता है जहां मीठा नारियल मिलता है। एक एक फलेर मूल्य दिया चारी चारी पन, दशक्रोश होते आनाय कोरिया जतन। वो 20 मील दूरस्थ स्थान से भी नारियल को जत्नपूर्वक लाता है और हर नारियल के लिए चार पन चुकाता है। प्रतिदिन पांच सात फल छोलाइया, सुशीतल कोरिते रखे जले डुबाइया। प्रतिदिन पांच सात नारियल छीलकर उन्हें शीतल बनाए रखते थे, रखने के लिए जल के भीतर रखा जाता है। भोगे समय पुनः छुली संस करी, कृष्ण समय पन करे मुख छिद्र करी। भोग चढ़ाते समय नारियल को फिर से छीला जाता है और साफ किया जाता है, उनमें छेद करके उन्हें कृष्ण को अर्पित किया जाता है। कृष्ण से ही नारिकेल जन पान करी, कभु शून्य फल रखें कभु जल भरी। इन नारियलों का जल कृष्ण पिया करते थे और कभी कभी नारियलों का जल निकालकर उन्हें रख दिया करते थे। मतलब कभी कभी नारियल का पानी यहां इसका मतलब यह है कि कभी कभी कृष्ण पी लेते थे और कभी कभी पीकर भी वो भर के रख देते थे। कभी कभी नारियलों का जल भर दिया जाता है। जल शून्य फल देखी पंडित हर्षित, फल भांगी शस्य करे सत्पात्र पूरित। जब राघव पंडित देखता कि नारियलों का जल पी लिया गया है तो वो परम प्रसन्न होता था। तब वो नारियल तोड़कर गड़ी निकलता और उसे किसी अन्य थाल पर रख देता। शस्य समर्पण करी बाहिरे धोआन, शस्य खाइया कृष्ण करे शून्य भोजन। गड़ी चढ़ाने के बाद वो मंदिर द्वार के बाहर ध्यान धारण करता। इस बीच कृष्ण सारी गड़ी खाकर थाल को रिक्त छोड़ जाते। कभु शस्य खाइया पुनः पात्र भरे शासे, श्रद्धा बारे पंडितेर प्रेम सिंधु हासे। कभी कभी गड़ी खाने के बाद कृष्ण थाल का नई गड़ी से भर देते। इस तरह राघव पंडित को श्रद्धा बढ़ती जाती और वो प्रेम के सागर में तैरता रहता। एक दिन फल दौर संस्कार करिया, भोग लगाइते सेवक आइलो लइया। एक दिन ऐसा हुआ कि एक नौकर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए लगभग 10 छिले हुए नारियल लाया। अवसर नहीं है विलम्ब होइल, फल पात्र हाथे सेवक दारेते रहिल। उस समय उन नारियलों का चढ़ाने के लिए समय न था क्योंकि पहले ही काफी विलम्ब हो चुका था। अतएव वो नौकर नारियल के पात्र को पकड़े हुए दरवाजे पर ही खड़ा रहा। दारेर ऊपर भीते तेहो हाथ दिल, सेई हाते फल छुईल पंडित देखिल। राघव पंडित ने देखा कि उस नौकर ने दरवाजे के ऊपर की छत छुई है और उसी हाथ से नारियल को छू रहा है। पंडित कहे दारे लोग करे गता गते, तार पद धुली उड़ी लागे ऊपर भीते। तब राघव पंडित ने कहा, लोग इस दरवाजे से लगातार आते जाते रहते हैं, उनको पैरों की धूल उड़कर छत को छूती है। शेई भीते हाथ दिया फल परुशिला, कृष्ण यज्ञ नहि फल अपवित्र हुई। तुमने दरवाजे के ऊपर की छत छूकर नारियल का स्पर्श किया है, अतएव ये कृष्ण पर चढ़ाने लायक नहीं रह गए क्योंकि ये दूषित हो गए हैं। एतो बोली फल फैले प्राचीर लंघिया, ओछे पवित्र प्रेम सेवा जगत जिनिया। राघव पंडित की सेवा ऐसी थी, उसने नारियलों को नहीं लिया अपितु उन्हें दीवार से बाहर फेंक दिया। ये सेवा अनन्य प्रेम पर आश्रित है और ये सारे जगत को जीतने वाली है। तबे आर नारिकेल संस्कार कराइल परम पवित्र करी भोग लगाइल। इसके बाद राघव पंडित ने दूसरे नारियल मंगाए, उन्हें साफ कराया और छिलाया और बड़े ही मनोयोग से अर्च्य विग्रह को खाने के लिए अर्पित किया। एई मतो कला आम्र नारंग कठाल जहा जहा दूर ग्रामे सुनिया छे भालो। इस तरह उसने उत्तम केले आम नारंगी कठाल तथा दूर दूर गांव से जिन जिन उत्तम फलों के विषय में सुना सबको एकत्र किया। बहुमूल्य दियान कोरिया जतन पवित्र संस्कार करी करे निवेदन। ये सारे फल दूर दूर स्थानों से काफी ऊंची कीमत देकर एकत्र किए गए, फिर उन्हें सावधानी तथा सफाई से काटकर राघव पंडित ने अर्च्य विग्रह को अर्पित किया। एई मतो व्यंजनेर शाक मल फूल मूल फल एई मतो चीरा हुडुम संदेश सकल। इस तरह राघव पंडित बड़ी सावधानी तथा धन से पालक अन्न सब्जियां मूली फल चिवड़ा चूर्णित चावल तथा संदेश मिठाई तैयार करता। एई मतो पिठापाना खीर ओदान परम पवित्र आर करे सर्वोत्तम। उसने पीठा पाना खीर को बड़ी ही ध्यान से पकाया और पकाते समय इतनी सफाई रखी कि भोजन उत्तम कोटि का तथा स्वादिष्ट बने। काशुंदी अदरक आदि अनेक प्रकार गंध वस्त्र अलंकार सर्वद्र भोषण। राघव पंडित कश्मदी जैसे आचार भी चढ़ाता। उसने विविध सुगंधिया वस्त्र गहने तथा अच्छे से अच्छे वस्तु अर्पित की। एई मतो प्रेमेर सेवा करे अनुपम जहा देखिर सर्वलोकेर जुराय नयन। इस तरह राघव पंडित अद्वितीय विधि से भगवान की सेवा करता। उसे देखकर सारे लोग अत्यंत संतुष्ट थे। एतो बोली राघवेरे कोइलो आलिंगने एई मतो सम्मानिलो सर्वभक्तगणे। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने दयापूर्वक राघव पंडित का आलिंगन किया। महाप्रभु ने अन्य भक्तों का भी इसी तरह सम्मान किया। हरे कृष्ण। तो आज हम यहां तक ही बात रखते हैं। गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की।